कुंज बिहार गोपी जाना
Thank you.
चतुर्भुजं शङ्खगदाद्युदायुधा Jai Shri Krishna Chaitanya. Hare Krishna. मैं घर में कुछ ठीक नहीं हुआ तो थोड़ी देर बाद में लगे कि मैं बोल नहीं पाऊँगा तो फिर किसी और कहूँगा. तो यहाँ आप पढ़ रहे हो प्रभु भगवान के जन्म के विषय में और कृष्ण भगवान क्या है, परम भगवान है. भगवान शब्द उनके लिए उपयोग होता है कि जिसके छह प्रकार के गुण हो सी मात्रा में. सुनाई पड़ रहा है जिसके छह प्रकार के गुण हो सी मात्रा में ऐश्वर्य से समय जो कि सबसे भगवान हो, सबसे खूबसूरत हो, सबसे ज़्यादा ज्ञानी हो, त्यागी हो, वीर हो, सबसे ज़्यादा धनी हो. ये छह गुण जो कि पार्थमुनि ने कहा है भगवान में होने जो है असीम मात्रा में, ये केवल परम भगवान में प्राप्त होते हैं. आजकल हम किसी साधारण व्यक्ति को चमत्कार करता है भगवान बनाते हैं, भगवान शब्द का दुरुपयोग हो रहा है. तो कृष्ण भगवान है सुप्रीम लॉर्ड, कृष्ण अतिम भगवान से ये है सारे आसमान. भगवद गीता में अनेक श्लोक हैं जहाँ भगवान ये स्थापित करते हैं कि उनका प्रकट होना अप्रकट होना दोनों ही दिव्यम है. दिव्यम है का अर्थ है भौतिक गुणों के पार. भगवान क्या कहते हैं इस प्रसिद्ध श्लोक में, जन्मा कर्म चामे एवं मेरी दादा जन्मा मेरी मेरी. भगवान कहते हैं मेरा प्रकट होना अप्रकट होना दोनों ही क्या है, दिव्यम नारायण बच्चे के समान है. और जो व्यक्ति ये समझ आए भगवान का प्रकट होना अप्रकट होना दोनों ही दिव्यम है, वो व्यक्ति क्या लाभ होता है, जन्म मिलने के बंधन से खुश हो जाता है. तो दूसरे शब्दों में भगवान जो प्रकट होते हैं अभी दिव्य रूप में प्रकट करते हैं और उन्हें समझने के लिए हमें पवित्र नेत्र चाहिए. क्या भगवान की अद्भुत लीला को समझ सकोगे. भगवान में अनेक गुण हैं. भगवान संहिता में भगवान जी कहते हैं अद्वैतम अच्युत बना दिया अनंत रूपम अद्यम पुराना पुरुषम हम योम. भगवान के अनेक गुणों में एक गुण ये है ग्रहण कार्य अचिंत्य है अद्वैत. वो उनके देह और आत्मा में कोई अंतर नहीं और वो अपने आप को अनेक रूपों में पकड़ते हैं. अच्युत बना दिया अनंत रूपम शेर और पुरुष के रूप में प्रकट हुए जैसे भगवान के रूप में मछली अवसार में समझ हुआ बड़ा भगवान बड़ा रूप लौट बड़ा के रूप में प्रकट हुआ. भगवान के लिए कोई कार्य अनुभव नहीं, किसी एक अंग से किसी और अंग का कार्य कर लेते हैं. जैसे कि आप भोग लगाते हो भगवान को, आप कहते हो ये भोग भगवान के लिए है, भगवान ने खा लिया, हम प्लेट को उठाते हैं थोड़ी देर के बाद वे भगवान ने खा लिया. बहुत एक दृष्टि से तो आपका प्लेट ऐसे भरा हुआ है, अब कैसे कहते हो कि वो भगवान ने खा लिया. भगवान खाते हैं अपने नेत्रों से और आप अगर नेत्रों कानों में दाल सूप का वो भूल मिला रहा कान में आप तो आपका सहयोग होगा नहीं होगा. तो परम भगवान के अनेक रूप हैं, सब सब क्या है देखो में. और भगवान गीता में क्या कहते हैं इधा इधा धर्म से गिरा है भव्य भारत प्रकट होता हूँ अलग अलग युग में अलग अलग समय में मैं प्रकट होता हूँ. और किसलिए भगवान प्रकट होते हैं, పాడైతున్నా సాధునా మీరు చేసిన దుష్కృతం ఏమాసం తప్ప నాసాయ అనేక మేము ప్రకట కృష్ణే ప్రతి శ్లోక భగవాన్ క్యా కే కృష్ణే ప్రకట హోదా కృష్ణే ధర్మకి స్థాపన కరే ధర్మకి స్థాపన కరే భగవానికి జే కృష్ణ యుద్ధకి పశ్చాత్ భగవాన్ క్యా కృష్ణ మహారాజ్ స్థాపిత కే రాజా जो भगवान धर्म के अपना के प्रकट होते हैं वे धर्म की सामना करते हैं अपने भक्तों के द्वारा तो कृष्ण भगवान कौन है परम भगवान है हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इसको हमारे उनको प्रभाव करना है पर सब भगवान एक समान है सब भगवान एक समान नहीं है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नारे राधे गोविंद कि अनेक ईश्वर हैं ईश्वर मेरा कंट्रोलर पर इन सब में सबसे प्रसिद्ध कौन है कृष्णा कृष्ण भगवान कृष्णा जी भगवान तो ये सारे शास्त्रों का निर्णय है क्या कृष्ण भगवान कौन है परम भगवान और भगवान जब प्रकट होते हैं अद्भुत लीला को प्रकट करते हैं एक समय हम किसी प्रसिद्ध सज्जन के संबंध में है वो हमें कहने लगा तुम ईश्वर वाले का खेल कहते हो केवल कृष्णा ही कृष्ण सुप्रीम लॉर्ड है और बाकी देवता हैं हम सब भगवान हैं मैंने कहा अगर आप अपने आप को भगवान बुलाना चाहते हो तो ये दिव्य लीला पकड़ कर भगवान ने उदाहरण के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाया था वहाँ यहाँ की छोटी उम्र से केवल पर आप उठा सकते हो कहने लगा आज नहीं पर कल संभव तो ये है ढोंगी भगवान तो कृष्ण भगवान हैं भगवान शास्त्र के आधार भक्ति योग का अर्थ है कृष्ण भगवान की समर्पण करना तो भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं पृथ्वी पर इसलिए राम की स्थापना के लिए जैसे कि परम भगवान प्रकट हुए चेतन महाप्रभु के रूप में वे भगवान के अवतार मेरे प्रकट हुए थे भगवान राम के रूप में वो भी भगवान के स्वयं भगवान हैं भगवान प्रकट होते हैं धर्म की स्थापना के लिए और अगर जब हम धर्म की चर्चा करते हैं तो फिर उसका अर्थ है परम भगवान का गुणगान भगवान जब प्रकट होते हैं पृथ्वी पर अपने सनातन भक्तों के साथ प्रकट होते हैं जैसे कि उनकी माता वासुदेव देवकी वासुदेव देवकी भगवान के माता पिता थे और जैसे भगवान के माता पिता कैसे बनते हैं और वासुदेव देवकी उनकी बड़ी गहरी भावना थी कि हम भगवान को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करें यही वासुदेव देवकी पहले भगवान के माँ बाप से सुदामा और कृष्ण सुदामा कृष्ण वासुदेव देवकी पहले बने थे भगवान के पिता सुदामा और कृष्ण के रूप में भगवान प्रकट हुए थे कृष्ण गर्भवास के रूप में होता फिर ये प्रकट हुए अदिति और कश्यप यही फिर प्रकट हुए हैं कि इसमें वासुदेव और वासुदेव देव के भगवान के माता पिता थे और उन्होंने ये भगवान को पुत्र के रूप में कैसे प्राप्त किया वासुदेव देव की एक ही इच्छा थी कि हमें परम भगवान पुत्र के रूप में प्राप्त हो और भगवान उनके इच्छा को पूरा किया तो वासुदेव देवकी ने कितने समय के लिए तपस्या की 12,000 देवताओं के युगों के देवताओं के टैलेंट के द्वारा इस पृथ्वी में और दूसरे लोगों में हमें का अंतर है। वहाँ 6 महीना उनका 12 घंटे के बराबर तो देखता हूँ कि 12,000 सालों के लिए वासुदेव जी ने कुछ नहीं खाया। आप एक दिन निर्जल रखते हो आप सबसे बड़ा क्या वासुदेव जी ने 12,000 सेलेस्टियल ईयर्स के लिए तपस्या की। लगातार सोच रहे थे भगवान के बारे में, भगवान बड़े प्रसंग में प्राप्त हो। और खाने के लिए क्या थी उनकी खुराक? पत्ते जो कि पेड़ों से गिरते थे, पशुओं जो पेड़ से गिरते थे, ये थी उनकी खुराक। 12,000 देवताओं के वर्ष थे और पत्तों के अलावा हवा, हवा थी सारी, नो पोल्यूशन। 12,000 देवताओं के वर्षों के लिए ऐसे देवी जी ने दिन रात चिंतन किया किस लिए भगवान प्राप्त हो। तो अगर हम आध्यात्मिक मार्ग में चढ़कर सफलता चाहते हैं तो क्या आवश्यक है? तपस्या। तपस्या का अर्थ संक्षेप में उन चीज़ों को त्यागना जो कि भक्ति के लिए प्रतिकूल है और उनको स्वीकार करना कि अनुकूल है। और आजकल अनेक धर्म के प्रचारक हैं पर वह धर्म तपस्या शब्द का ज़्यादा उपयोग नहीं करते। वो डर रहता है, भय रहता है, तपस्या बोलेंगे चर्चा करेंगे तो कोई आएगा नहीं। पर वासुदेव जी के उदाहरण से हम देख सकते हैं कि उनकी तपस्या किसी थी हमारे जान देवताओं के वर्षों के लिए था। तो परम भगवान प्रकट होते हैं भक्तों के अंदर में और उनके भाई और रिश्तेदार वो भी प्रकट होते हैं। जैसे उनके बड़े भाई बालराम, बालराम जी को दाऊ जी बुलाया जाता है। दाऊ जी का मतलब है बड़े भगवान। बालराम के मन में एक ही भाव रहता है, क्या? कि भगवान की सेवा। भगवान और हे बालराम प्रकट हुए थे, राम जी प्रकट हुए थे किस रूप में? लक्ष्मण के रूप में। लक्ष्मण भगवान के सनातन साथ आते हैं, उनके मन में सदा एक ही भाव रहता है कि मैं भगवान के राम की सेवा करूँ। और पैदाइशी से लक्ष्मण के मन में एक ही भाव था, लक्ष्मण की सेवा। और हम देखते हैं कि भगवान का विवाह हुआ सीता के साथ, तो सीता आई थी भगवान के महल में, वो जो दुखी हो गई क्यों? उसने देखा कि उसके लिए कोई सेवा ही नहीं है सीता ने बोल, क्यों? क्योंकि जो भी सेवा वो करने जाती है तो लक्ष्मण पहले कर लेता है। लक्ष्मण को पता था कि भगवान ऐसे कह रहे हैं उसका क्या। तो सीता ने कहा राम जी से, आप मुझे लाए हो पर कोई मेरी तो कोई सेवा ही नहीं है, जो सेवा मैं करने जाती हूँ लक्ष्मण पहले कर लेता है। भगवान ने कहा ये बड़ा कठिन स्थिति है, अगर मैं सीता के पक्ष में बोलूँगा लक्ष्मण मुक्ति होगा, लक्ष्मण के पक्ष में बोलूँगा तो सीता दुखी हो जाएगी। उन्होंने कहा चलो गुरु जी के पास चलते, वो गए ऋषि मुनि के पास। उन्होंने अपनी समस्या का की चर्चा की। लक्ष्मण ने कहा मैंने तो पैदाइशी से एक ही भाव था, क्या? राम की सेवा। गुरु जी ने निर्णय लिया, क्या कहा गुरु जी ने? कि जो घर की सेवाएँ हैं महल की, ये सब सीधा करेगी, जो बाहर का जो कार्य है वो लक्ष्मण करेगा, ये उसकी तैयारी करना, युद्ध में लड़ना। लक्ष्मण इससे खुश नहीं थे, पर यही लक्ष्मण प्रकट हो गए भगवान जब प्रकट हुए थे उनके भाई बालराम से गए। बालराम लक्ष्मण ने कहा मैं भी छोटा भाई नहीं बनना, बड़े भाई में मुझे हर कार्य करना पड़ता है, मैं बड़े भाई के रूप में प्रकट होना चाहता हूँ। फिर वो प्रकट हुए और राम जी के रूप में, वही बाद पे प्रकट हुए भगवान नित्यानंद के रूप में। तो भगवान जब प्रकट होते हैं, अभी सनातन साथी उनके साथ प्रकट होते हैं, और बालराम जी जो भगवान के बड़े भाई थे, उनके मन में क्या था? सदा कृष्णा की सेवा, और कृष्णा की सेवा के अलावा और कोई इच्छा नहीं थी। तो परम भगवान प्रकट होते हैं दिव्य रूप में। तो वासुदेव देव की को भगवान ने कम से ये भी रख लिया था, क्यों कम सा बढ़िया सुर भाव का, और वासुदेव की विवाह हुआ, और देवकी के भाई थे कंस। तो वासुदेव देवकी का जब विवाह हुआ देवकी के पिता ने बहुत डाउली ली, बहुत बड़ी 400 हाथी सजे हुए सोने के साथ नहीं खाएँ। तो कंस जो देवकी का भाई था, उसने ये उसने कहा मेरी बहन का विवाह हुआ है, मैं बहन को अपने नए घर में छोड़ कर आऊँगा। तो जो इस वाली के जो रथ में जा रहे थे और पास रथ लकौल चलाया था कम, जब वो पहले रात को ही शादी के पश्चात जा रहे थे, तो रास्ते में एक दिव्य वाणी द्वारा कंस को संदेश मिला, हे कंस तुम मूर्ख हो, अपनी बहन को छोड़ रहे हो, छोड़ के नए घर में छोड़ने जा रहे हो, पर इस बहन के आठवें पुत्र के द्वारा तुम्हारा वध होगा। जब सूर ने ये सुना कि मेरे इस वाणी में पूरा विश्वास कर लिया उन्होंने, जब कब से देखा ये बड़ा भयंकर संदेश है, इस बहन जिसको मैं ले जा रहा हूँ अपने अपने नए घर में, उसका बेटा अगर मेरा वध करेगा तो उसे तो अच्छा है कि मैं अपनी बहन का वध कर लूँ। और संगम से तलवार निकाली और कहा कि अब मैं देवकी का देवकी का मारना चाहता हूँ। फिर वासुदेव होशियार है, वो समझ गए क्या वो समझ गए कि कहाँ मेरी बहन जो है उसकी उदास के द्वारा मैं अमल होगा। जो शुभ भाव के व्यक्ति होते हैं वो कुछ भी करने को तैयार हैं अपने स्वार्थ के लिए, चाहे किसी की मृत्यु हो करानी है। जैसे कि आज के बाजार में आप क्या देखते हो, पीछे सुनाई दे रहा है, समझ आ रहा है नहीं आ रही समझ, तो हाथ उठा रहे हैं। तो वासुदेव ने होशियारी से उसको ये विश्वास दिया, तो मेरी बहन को मत मारो, खतरा तो तुम्हें है किससे, इसके आठवें पुत्र के साथ। तो कोई चिंता की बात नहीं है, तो हर बच्चा पैदा होगा आप मुझे ला के दिखाना, मैं तो पहचान होगा इससे खतरा है, तो ले जाओ ये बेटे को वापस घर। तो देवकी बड़ी खुश हुई कि हंसते पहले तो मुझे मारने का सोच रहा था, मेरे बेटे को हमें डर था, और कंसने कह दिया बेटे को घर ले जाओ। तो फिर जो असुर मंत्री थे कंस के, मैं नहीं हमें जो भगवान प्रकट हो गए हैं, हमें भी पता नहीं कौन है वो बच्चा इसके द्वारा उनके जीवन को खतरा हो, तो हमें तो सब बच्चों को मार देना चाहिए। तो कंस की सुरक्षा के लिए उन्होंने क्या किया, सब बच्चों को मारना शुरू किया। तो कंस जो है असुर भाग रहा था और भगवान प्रकट हुए कैसे, देवकी के द्वारा से। भगवान प्रकट हो उनसे पहले कि भाई बालराम प्रकट हो गए थे, तो भगवान प्रकट हुए और कंस का वध हो गया था। तो परम भगवान जो हैं वो क्या, मेरे कोई कार्य असंभव नहीं। आप बस भगवदम के दसवें स्कंद में पढ़ते हो भगवान की लीलाओं के विषय में। तो कई बार हम देखते हैं कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं उस लीला वो पहुँचते हैं कहाँ, रासलीला के ऊपर। जो रासलीला है भगवान की वही अद्भुत है, दिव्य है। वही जो गोपियाँ हैं भगवान की सहेलियाँ नहीं थी, गर्लफ्रेंड नहीं थी, ऐसी औरतें जिन्होंने हजारों सालों के लिए तपस्या की थी भगवान की संगत प्राप्त करने के लिए। ये गोपियाँ थी, बड़े ऊँचे कोटि के, ऊँचे कोटि का भाव था उनमें। निरंतर 24 घंटे उनके मन में एक ही भाव था, क्या कृष्णा की सेवा। तो कम बुद्धि के व्यक्ति ये समझ नहीं पाते, वो सोचते हैं ये जो भगवान की रासलीला है ये हमारे आनंद के लिए है। जिस तरह भगवान लड़कियों के साथ नाच रहे हैं तो हमें भी लड़कियों के साथ घूमना चाहिए। तो वो भगवान के दिव्य लीला का दुरुपयोग करते हैं। व्यास देव ने हमें श्रीमद् भागवतम का ज्ञान दिया। व्यास देव जी ने अनेक शास्त्रों के निर्णय की रचना की थी, फिर भी वो संतुष्ट नहीं थे और वो पहुँचे अपने गुरु नारद मुनि के पास। और नारद मुनि ने क्या कहा, तुमने शुद्ध भक्ति पर केवल बल दे दिया, तुमने जो दूसरे ग्रंथों की स्थापना की है उसमें भगवान के कमरने तो है पर कर्म करने तैयारी का भी वर्णन है। और आप शुद्ध भक्ति का उपदेश दो क्योंकि तो उन्होंने दिया कि इसमें श्रीमद् भगवत। तो जो दसवां स्कंद है उसमें भगवान की अद्भुत लीलाओं का वर्णन होता है। और हमें जब हम ये पढ़ते हैं भगवान की बाल लीला, बाल लीला के द्वारा आप देखते हो वहाँ की जो लीलाएँ हैं अद्भुत है। और इन लीलाओं का वर्णन के पश्चात फिर जाके व्यास ने भगवान की यहाँ से लीला का वर्णन करते हैं। तो हमें भगवान को पढ़ना है तो प्रथम स्कंद से पढ़ना चाहिए। तो इसके द्वारा जब आप पहुँचोगे दसवें स्कंद तक आपके मन में कोई शंका नहीं होगी परम भगवान कौन है। तो परम भगवान प्रकट होते हैं पृथ्वी पर और दिव्य लीला प्रकट करते हैं। वहाँ की जो लीलाएँ हैं ये कोई साधारण लीलाएँ हैं नहीं, जैसे कि भगवान ने पूतना का वध, भगवान गोकुल में थे, लोग आश्चर्य हो गए थे। वहाँ भगवान ने अभी दिव्य लीलाओं को प्रकट किया रावण में। और कंस जो है उसको भी भय था, क्या मेरी मृत्यु हो जाएगी इस आठवें पुत्र के द्वारा। और भगवान जब प्रकट हुए अपने दिव्य रूप में, माता पिता ने कहा तुमने दिव्य रूप में प्रकट हो गए, वो क्या कहा गया, उनके लिए चार हाथ हैं, आपने कभी देखा है चार हाथ के बच्चे को जन्म देते हुए, इतिहास में देखा है कि हाँ क्योंकि बच्चा माँ के गर्भ से निकल रहा है चार हाथों के साथ। और उनकी छाती में क्या था, शिव वस्त्र, हाँ और उनके पास उनमें शरीर सजा हुआ था किसके साथ, विधुरिया मणि के साथ। ये जो विधुरिया मणि है हाँ कोई साधारण ज्वेलरी स्टोर में नहीं खरीद सकते, ये जो विधुरिया मणि है इसका रंग हर पल पर बदलते जा रहा है। अभी लाल पीला रंग है, विंडो में पीला हो जाएगा, विंडो में लाल हो जाएगा, विंडो में ब्लू हो जाएगा, रंग बदलते जा रहा है। और ये पावसी कैसे है, ये जो मणि है ये केवल आप प्राप्त कर सकते हो वैकुंठ लोक में जाओगे, ये मणि आपको भी प्राप्त करता है। भगवान प्राप्त प्रकट हुए इस दिव्य रूप में। क्या कारण है? क्योंकि उनके वासुदेव के अनेक पुत्रों का वध हो गया था, किसके द्वारा? कंस के कारण। तो और भगवान अपने माँ बाप को यकीन दिलाना चाहते थे मैं प्रकट हो गया हूँ आप डोंट वरी, क्योंकि उनके छह पुत्रों का वध हो गया था। भगवान प्रकट हुए अपने दिव्य रूप में और वासुदेव देव की कैद में थे, जेल में कैदी थे। एक समय हम किसी को प्रचार कर रहे थे जो कि जेल का चार्ज था, वो कह रहा था हम तो इधर भगवान के माँ बाप जेल में थे, हम भी जेल में ही काम करते हैं। वो उनको वो कैदी बना दिया था। तो वासुदेव ने जब देखा कि भगवान अब प्रकट हो चुके हैं, भगवान को देखा इस दिव्य रूप में, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सोचा कि बेटा भी जन्म मेरे जन्म लिया है, मुझे ध्यान करने दो। तो उन्होंने अपने मन ही मन में 10,000 गायों का दान किया, किसे? ब्राह्मणों को। तो गाय के 10,000 गाय मन ही मन में समर्पण कर दिया, किसे? भगवान ब्राह्मणों को। तो शुद्ध ब्राह्मणों का समाज में होना बहुत आवश्यक है। शास्त्र में कहा जाता है चतुर्वर्ण माया शिक्षा, ये समाज का विभाजन होना चाहिए, चार वर्ण और चार आश्रम है, हमें क्षत्रिय वैश्य शुद्ध और ब्रह्मचारी गृहस्थ। तो ब्राह्मणों का समाज में होना बहुत आवश्यक है। तो ब्राह्मण उसे कहते हैं क्योंकि जो कि निष्काम भाव से भगवान की सेवा में जुड़ता है। ऐसे जो भगवान राम का राज्य था तो उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाकर अनेक भेद दिए, हेनों की और जमीन। ब्राह्मणों से जब पूछा कितनी जमीन आपको चाहिए, हर ब्राह्मण ने कहा सिर्फ उतना जितना की आवश्यक हो, उससे ज़्यादा। और ब्राह्मण जो थे जो गहने जो उनको मिले थे उन्होंने सारे गहने लुटा दिए। भगवान ने कहा हम आपके चरण कमलों का माया करने से संतुष्ट हैं। तो जो ब्राह्मण हैं उनके पास अध्यात्मिक ज्ञान होता है और अध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश आगे देते हैं। भगवान गीता के 18वें अध्याय में समूह नमो सब सोचो शांति राजा में हो चा ज्ञान विज्ञान वास्ते क्या समा कर्म सुभा कर जाओ, ब्राह्मणों के गुणों का वर्णन किया जा रहा है। तो वासुदेव ने 10,000 गाय दान में दे दी ब्राह्मणों को। तो अगर आप कभी ऐसी स्थिति में हो कि आप शरीर के द्वारा सेवा नहीं कर सकते तो मन में कर सकते। बाकी रसम सिंधु में रूपा गोस्वामी एक उदाहरण देते हैं। एक समय एक बहुत गरीब ब्राह्मण था। ब्राह्मण जो हैं वो हर स्थिति में संतुष्ट रहते हैं, सुख हो या दुख। तो वो बहुत गरीब था, तो वो कथा में उसमें एक कथा सुनने गया था जिसमें कथाकार ने कहा कि अगर आप ऐसी स्थिति में हो कि आप शरीर द्वारा सेवा नहीं कर सकते तो मन द्वारा कर सकते हो। इस ब्राह्मण ने मन ही मन में एक सुंदर मंदिर बना लिया और उसने मूर्तियों का स्थापना भी की और बड़े नियम के अनुसार दिन में 7 बार वो ब्राह्मण आरती करता था और खुद अनेक पवित्र नदियों में पहुँच कर वहाँ से जल आता रहता वहाँ के अभिषेक के लिए। जैसे जन्मन में वहाँ के राधा कृष्ण का विग्रह है वहाँ उनको वहाँ की अभिषेक होती है रोज, और वो जो अभिषेक का अभिषेक की जो अभिषेक का जो नतीजा है वो आप प्राप्त करते हो चरणामृत के रूप में। चरणामृत रूप में जल जल में जल वो है जिसे अपने भगवान को है। तो ये ब्राह्मण रोज भगवान का अभिषेक करता था और भगवान का भोजन भी अकेले बनाता था। तो इस प्रकार ये ब्राह्मण कई सालों तक इस प्रकार भगवान की सेवा करते गया। मन ही मन में उसका सुंदर था, भगवान इतने प्रसन्न हो गए थे इस ब्राह्मण के सेवा के द्वारा कि भगवान एक दिन क्या हुआ वो देखना चाहता था कि जो खीर बनी है भगवान के लिए ये गर्म है या ठंड। उसने अपनी उंगली को डाला उस प्याले में, उसका जो हाथ है उंगली है जल गई वास्तविकता में। उसने कहा ये कैसे संभव है, वो आश्चर्य था। भगवान इतने प्रसन्न थे इस लीला को देख रहे थे और हंसने लगे जब हमने अपनी उंगली को देखा कि उंगली जल गई है। वो तो लक्ष्मी जी भगवान के साथ थी, उन्होंने कहा आप हंस रहे हो क्यों। तो भगवान ने अपना हवाई जहाज भेजा इस ब्राह्मण को हमें धाम में लाने के लिए। तो मन द्वारा भी आप सेवा कर सकते हो, इसका ये अर्थ नहीं कि आप कहोगे हम मित्र मैराथन से मन से करेंगे। अगर आप ऐसी स्थिति में हो ऐसे वासुदेव थे वो कंस के जेल का है, अगर आप ऐसी स्थिति में हो आप फ्री से सेवा नहीं कर सकते फिर मन के सेवा। तो परम भगवान जो है वो कहें सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। तो इस प्रकार भगवान की अनेक लीलाएँ हैं। तो इन लीलाओं के द्वारा क्या देखते हैं कि सब अद्भुत है। जैसे एक छोटे बच्चे ने पूतना का वध कर दिया, भगवान में तो बिल्कुल पैदा ही हुए थे और कम पूतना राक्षसी पूर्व पूतना राक्षसी जो थी उसने अनेक बच्चों का घायक की मृत्यु हो गई थी। बिल्कुल असुर थी, असुरों का एक भाव रहता है सबका वध किया जाए। और कंस जो थे राजा थे, कंस ऑर्डिनरी पर्सन वाज़ अ किंग और वो राजा थे, उसने उसको भय था कि इस देवकी का आठवां बेटा बच्चा आगे जिंदा है वो मरा नहीं है। उसने असुरों को भेजा एक बार एक उनका बात करने के लिए। पूतना के भगवान पूतना ने अपने आप को बड़ा सजा कर खूबसूरत औरत के रूप में प्रकट हुए। तो सब महल नंद महाराज के सब खुश थे और उस सब में वो आई और सब औरतों ने सोचा ये तो बड़ी रिस्पेक्टेबल दिखती है, माननीय दिखती है। तो पूतना ने क्या किया, भगवान समझ गए थे ये क्यों आ रही है। और क्या हुआ कि पूतना का ही जीवन समाप्त हो गया। तो जो ब्रजवासी थे वो समझ नहीं पा रहे थे ये छोटा बालक है कृष्णा वो लिखता है कि उसमें कोई खास शक्ति है। एक रथ था चैरियट, उसको भगवान ने हाथ लगाया ऊपर से नीचे आ गया हमने कहा कैसे आया? और कई बने कहा तुम्हारे बच्चे ने फॉर्म फरमाया वो नीचे आ गया। तो हमारा सोचने लगी ये कैसे संभव है, ये छोटा सा बच्चा 3 महीने का 5 महीने का लेके सूरनी का वध किया, रात को मारा नीचे आ गया। तो जो बेटा जो सोचे थे अब क्या किया जाए, लगता है ये जो बालक है ये कोई खास बालक है, साधारण बालक नहीं है, खास बालक है। इतने छोटे बच्चे के द्वारा एक राक्षसी पूतना मर ये मर गए, एक और राक्षस आया था सेना मरता उसका भी वध हो गया। वो सोचने लगे जो हमारा बालक कृष्ण है मनोरिशोदा का पुत्र उसमें कोई दिव्य शक्ति है, दिव्य शक्ति है क्या, ये दिव्य शक्ति है यानी असुरों का वध हो जाता। तो भगवान जो प्रकट होते हैं पृथ्वी पर अपनी दिव्य लीला प्रकट करते हैं, और ये दिव्य लीला केवल भगवान प्रकट कर सकते हैं, उनको देवता देवी नहीं। तो इसी प्रकार जो ब्रजवासी थे भगवान की लीला को देखकर आश्चर्य हो रहे थे। एक समय भगवान खेल रहे थे अपने मित्रों के साथ, तो बालराम उनके मित्र हार गए भगवान के सामने। तो उन्होंने शिकायत लगाई यशोदा माता से कि आपका बेटा जो है मिट्टी खाता है। माँ बड़ी घबरा गई, मेरे घर में किसी चीज़ की कमी है क्या, नंद महाराज के पास भी क्या संपत्ति थी, 9 लाख गायें थी, कितने 9 लाख, और इन गायों के दूध में सुगंधित हो रहे जो 20 गायें थी उनमें उनका जो दूध आता था सुगंधित होता था। आजकल अगर आप टेस्ट को अगर आप टेस्ट चाहते हो तो आप स्ट्रॉबेरी वनीला ये सब अलग अलग फ्लेवर खा सकते हो उनमें, पर नंदमान के समय 20 गायों के खास नाम था और खास सेवा, और वो इन गायों के द्वारा सुगंधित दूध भी आता था। तो भगवान की जो लीलाएँ हैं सब बिल्कुल दिव्य हैं। नंदमान के पास 9 लाख गायें, तो मतलब यशोदा कह रही थी मेरे घर में क्या किसी प्रकार की कमी है, मेरे पति के 9 लाख गाय हैं, तुम जाकर मिट्टी क्यों खाते हो। भगवान ने कहा अगर तुम्हें विश्वास नहीं है कि मैं मिट्टी नहीं खाई तो मुँह खोल कर दिखा दूँगा। वो माता ने कहा ठीक है दिखाओ। जब उसने मुँह खोला उस मुँह में क्या देखा माता ने, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन, पूरे ब्रह्मांड का, और किस प्रकार जो व्यक्ति हैं कष्ट अनुभव कर रहे हैं, और जब उन्होंने अपने बेटे के मुँह में अनेक प्रकार के पूरे ब्रह्मांड का दर्शन लिया तो क्या सोचने लगी, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही कि मुँह के बेटे के मुँह में बन कर दर्शन। तो पूरे आप अगर डॉक्टर बचाते हो मुँह खोलते हो अपना कहते ना करो तो आपको ब्रह्मन का दर्शन प्राप्त होता है, केवल बलगम होगा। तो परम भगवान जो है जन्म कर्म शामिल प्रकट होना बिल्कुल दिव्यम है। भगवान की जो लीलाएँ हैं उनमें भगवान के अनेक गुणों को पढ़ते हो। प्रभुपाद जी की बहुत इच्छा थी कि जो कृष्ण बुक उन्होंने प्रस्तुत किया है जिसमें प्रकाशित किया है जिसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन है इसकी इसकी पर इसको जल्दी प्रकाशित किया जाए। तो प्रभा जी ने अपने भक्तों को भेजा था इंग्लैंड में प्रचार करने के लिए लंदन में, और उनका परिचय हो गया एक बीटल्स के साथ। बीटल का नाम सुना है? एक समय वो देवता के समान लोग उनकी पूजा करते थे। तो प्रभा जी को मिलने आए थे श्याम सुंदर न्यूयॉर्क में। उन्होंने कहा कि अब जॉर्ज हैरिसन बहुत अच्छा भक्त बन गया, रोज हरे कृष्ण नहीं करता जाप में। प्रभा चाहते थे कि कृष्ण भगवान की लीलाओं को प्रकाशित किया जाए बड़ी धूमधाम से हाई स्टैंड। तो प्रभा जी ने कहा श्याम सुंदर माई ओनली वास जॉर्ज टू पेपर प्रिंटिंग ऑफ दिस कृष्णा कृष्णा बुक। श्याम सुंदर ने कहा आज जॉर्ज इज अ न्यू डिवोटी, ही हैव बीन मिसिंग दिस इन अस। नो डोंट वरी। तो जब श्याम सुंदर वापस इंग्लैंड आया तो गए जॉर्ज हॉरिसन को मिले। उन्होंने कहा माई स्पिरिचुअल मास्टर वॉन्ट्स यू टू प्रिंट दिस बुक इन वेरी लैविश वे, सो वी पे फॉर इट। और जॉर्ज ने एकदम पूछा हाउ मच यू नीड हेल्प। तो ये भगवान की लीलाओं का वर्णन हुआ था कि इसमें दस स्कंद में, जिसको प्रभा जी ने सार रूप में प्रस्तुत किया है कृष्णा बुक के द्वारा। तो ये कृष्णा बुक हमें बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए। भगवान की अनेक लीलाएँ हैं, एक बड़ी मधुर लीला है हम भगवान की यशोदा माता के साथ। यशोदा माता बड़े ध्यान से एक दिन ये भगवान के लिए दूध बना रही थी और नौकर सब सो रहे हुए थे, और यशोदा माता अपने मन में क्या सोच रही थी, मेरा जो बेटा है उसे लोग कहते हैं लोगों के घरों में जाकर क्या दूध चुराता है, दही चुराता है, मक्खन चुराता है, मेरे घर में क्या किसी चीज़ की कमी है, तो शायद मेरा बेटा मैं पड़ोसियों के मक्खन से ज़्यादा खुश है। बड़े ध्यान से लस्सी दूध की तैयारी कर रही थी और यही सोच रही थी कि मेरा बेटा इसे पसंद हो। पाँच दामोद लीला दामोद लीला में क्या करते हैं देखते हैं कि भगवान मक्खन छोड़ते हैं और जो पड़ोस की गोपियाँ हैं वैसा शिकायत करती थी तुम्हारा बेटा हमारे घर में आकर मक्खन चुराता है। और भगवान के अनेक नाम हैं, इनमें एक नाम क्या है मक्खन चोर। अगर आपको चोर बुलाया जाए आपको आपको कब को अच्छा नहीं लगेगा, अगर आपके नाम के सामने जोड़ दें मक्खन चोर। पर भगवान को हम मक्खन चोर बुलाते हैं और इसमें कोई अपमान नहीं है। भगवान को मक्खन चोर की क्यों बुलाते हैं, ये पड़ोसियों की गोपियों के घर में जाकर मक्खन चुराते थे। तो भगवान की अनेक लीला है। एक समय भगवान जो है भगवान अपने मित्र के साथ पड़ोस की गोपी के घर में गए। उन्हें पता था कि ये गोपी रोज इस समय यमुना नदी के किनारे जाती है वहाँ। तो भगवान इस पड़ोसी के बेटे के साथ मिलकर उनके घर में मक्खन चढ़ा रहे थे, और जो गोपी है जल्दी घर लौट गए। तो वे सारे पड़े गए गोपी ने कहा तुम्हारी माँ हमेशा कहती है कि तुम लोग मेरे बेटे को दोष दे रहे हो मक्खन चढ़ा, अगर कुछ प्रमाण है आपके पास ये प्रूफ। उस दिन में कैमराज नहीं थे। तो जब गोपी ने पकड़ लिया भगवान को अपने हाथों से कहा तुम्हारी माँ हमेशा कहती प्रमाण कहाँ है, और मैंने रहन ने तुम्हें पकड़ा है, तुम चलो मेरी माँ को प्रमाण देना चाहती हूँ। वो तो गोपी भगवान को पकड़ कर जा रही थी सुधा माता को मिलने के लिए, और उनके साथ एक गोपी का जो बेटा है वो भी था। भगवान ने बड़े चापलूसी से अपने हाथ को उठा निकाल लिया और उनके बेटे के हाथ को रख दिया माँ के हाथ में। जब सुधा माता के घर में पहुंची गोपी, तुम कहते हो तुम्हारे बेटे का कोई प्रमाण नहीं है, ये देखो प्रमाण, ये तुम्हारा बेटा है, मेरा बेटा था वह मक्खन खा रहा है। भगवान मक्खन चुराते थे तो कोई उसे पकड़ नहीं पाया। एक समय हमारे इस्कॉन के केंद्र में विदेश में लॉस एंजलिस में इस्कॉन का मंदिर खुला था, तो पड़ोस के जो कर्मी लोग थे पड़ोस में, उन्होंने देखा कि उनके बगीचे से फूल रोज गुम जाते हैं, और उन्हें ये नहीं समझ आ रही थी फूल गुम कैसे हो। फिर उन्होंने देखा कि हरे कृष्ण के भक्त आते हैं और फूल चुरा कर ले जाते हैं, तो उन्होंने शिकायत की। तो प्रभुपाद जी को जब ये सूचना मिली कि उनके भक्त पड़ोस के घरों में जाकर फूल कर चुराते हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं, पापा ने कहा यू वॉन्ट टू स्टील यू शुड बी लाइक कृष्णा व्हेन एवर गॉड कॉट अदरवाइज डोंट स्टील। पापा का संदेश था चोरी करने तो कृष्णा जैसे रहो कि कोई तुम्हें पकड़ नहीं पाए, नहीं कर सकते तो चोरी मत करो। तो दूसरे शब्दों में पापा कह रहे थे चोरी मत करो। भगवान की भगवान के अनेक लीलाओं में गोवर्धन पूजा की है, गोवर्धन पर्वत की लीला बड़ी प्रसन्न है। भगवान के माता पिता इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे थे, भगवान के पिता काफी किसान थे, और उनके बिलवासी किसान सब प्रार्थना कर रहे थे इंद्र से कि आप क्यों, ये प्रार्थना कर रहे थे कि हमें वर्षा प्राप्त हो, वर्षा के बिना कोई जी सकता है नहीं। जैसे भगवान गीता में कहते हैं अन्न की प्राप्ति होती है वर्षा के कारण, और वर्षा की प्राप्ति होती है धर्म के नियमों का पालन करो। आजकल आप क्या देखते हो, ये देखते हो कि कोई यज्ञ तो कोई करता नहीं, इसलिए बारिश कभी कोई टाइम पर आती है, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, और कभी कभी सूखा रहता है। तो ये है क्योंकि पृथ्वी पर पाप का बोझ बहुत बढ़ गया है। तो जब भगवान ने इन पिता को और दूसरे किसानों को ये विश्वास दिलाया कि ये जो है ये तो कर्मों के कारण हो रहा है, तुम तो लोग इंद्र की सेवा क्यों कर रहे हो। भगवान ये बताना चाहते थे देवता की पूजा में पर भगवान की पूजा में अंतर है। तो इंद्र ने जब देखा कि इस छोटे बालक के कारण इंद्र ने इस छोटे बालक के कारण उन्होंने मेरा यज्ञ रोक दिया था, उन्होंने तेजी के साथ बारिश समता का बादल ऐसे हैं जब वो हिलते हैं तो बड़े जोर से आवाज़ आ रही है ठंड में। तो इन्होंने जब समता का बादल भेजे उनका ये उद्देश्य था क्या कि पूरे ब्रजवासी डूब जाए, क्रिमिनल भाव था। भगवान ने देखा जब इतनी तेजी से बारिश बरसने लगी तो जो ब्रिजवासी थे घबरा गए, उन्होंने कहा कि आप हमें बड़ी कठिन स्थिति में डाल रहे हैं, मैं भगवान समझ गए कि जो भक्त हैं वो निराश हैं। उन्होंने गोवर्धन पर्वत, आप सबने गोवर्धन पर्वत का दर्शन लिया है, तो गोवर्धन पर्वत आज जो है वो छोटा है। तो भगवान पृथ्वी पर थे, गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई बादल तक थी, बादल तक थी उसकी भाई। जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया, बाएं हाथ के कौन सी उंगली, सबसे छोटे उंगली के नाखून के बल पर, अभी ये लीला कोई साधारण व्यक्ति कर सकता है, कोई देवता कर सकता है नहीं। और 7 दिन के लिए जो ब्रजवासी थे गोवर्धन पर्वत के छत के नीचे थे, और वो क्या कर रहे थे, भगवान के चेहरे पर ध्यान से देख रहे थे, भगवान के चेहरे पर ध्यान से देख रहे थे, जिसके कारण उन्हें ना भूख लगी ना प्यास लगी। तो इन्होंने जब देखा कि उनकी योजना सफल नहीं हुई, इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहाँ से माफ़ी मांगी, उन्होंने एक स्तुतियों द्वारा उनका गुणगान किया। तो परम भगवान श्री कृष्ण जो है वो दिव्य लीला प्रकट करते हैं, लेकिन तुलना कोई कर नहीं सकता। तो आज जो गोवर्धन पर्वत है पहले की तुलना में बहुत छोटा था, तो बयान सार के लिए। तो अगर आप भगवान की लीलाओं में लीन हो जाओगे तो आपको भी भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी। इस समय हम भूखे भी हैं प्यासे भी हैं। भूखे किस लिए इंद्र तृप्ति के लिए। हम सोचते हैं कि बहुत एक कार्यों के द्वारा सुख आएगा। ऐसी सोच क्या है कि हमें भगवान कृष्ण के शरणागत होना चाहिए। भगवत में आप देखते हो कि अब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ज्ञान दे रहे थे, तो जब वो 10वें स्कंद पर पहुँचे तो परीक्षित महाराज ने कहा, मैं 7 दिन की अपनी तैयारी कर रहा हूँ और 7 दिन ना मैंने कुछ खाया है ना पिया है, तो मुझे इतना आनंद आ रहा है भगवान की लीलाओं के पोषण कर, मुझे भूख भी नहीं लग रही और प्यास भी नहीं लग रही। तो इसी प्रकार इफ यू टेक शेल्टर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड यू विल फ्री योरसेल्फ फ्रॉम मटेरियल हंगर एंड मटेरियल थर्स्ट एंड फ्री योरसेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ बोर्डलैंड। कृष्ण भगवान का संदेश है कहाँ, श्रीमद् भगवद गीता में। भगवद गीता में भगवान का संदेश है, और भगवद गीता का निचोड़ क्या है, 8वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं, कौन सा है वो प्रसिद्ध श्लोक, वहाँ पढ़ते वहाँ में हम तब समय पापे भी हम मोक्ष में मात्र। तो जीवा गोस्वामी कहते हैं इस श्लोक का अर्थ है कि हमें सब कुछ समर्पण करके कृष्ण भगवान की शरण लेनी चाहिए, और सर्वधर्माओं का मतलब है भगवान कृष्ण के शरणागत हो। और तो आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हमें क्या भाव रखना चाहिए, क्या भाव रखना चाहिए कि हम भगवान के शरणागत हो सके 100%, 100% विद बॉडी माइंड एंड इंटेलिजेंस वी टू सर्व द लॉर्ड दैट इज रियल समर्पण। ऑन दिस ऑस्पिशियस डे वी शुड प्रे टू द लॉर्ड कि हमारा भक्ति में आकर्षण बढ़े और हम भक्ति में ज़्यादा रुचि रहे, फिर आप जन्माष्टमी का असली लाभ उठा रहे हो। 5 शुभ दिन हैं जो भगवान प्रकट हुए थे, भगवान प्रकट होते हैं फिर गीता में कहा गया क्या, राम की स्थापना के द्वारा भगवान कलयुग में प्रकट होते हैं इस रूप से ना अपने नामों के भगवान के जो नाम हैं भगवान से भिन्न नहीं है, भिन्न है अब भिन्न है। जब हम महामंडल का उच्चारण करते हो राधा रानी है कृष्ण विधि में नाचते हैं, जब आप बोले वाले व्यक्ति कहते हैं तो एक ही नाम का उच्चारण दिन रात करते हो, थकते नहीं। आप थके हो कभी हरि नाम करके, ऐसे बोलिए, प्रकट नाम के द्वारा उलख है, इसमें कोई आनंद नहीं, आनंद बुरी वर्धनम। हाँ वो कहते हैं कि हरि नाम के उच्चारण का एक लाभ है, जो आनंद है वो क्या, ये बल बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। तो वी शुड हैव फुल फेथ इन द स्पिरिचुअल पोटेंशियल ऑफ द होली नेम, द होली नेम उसका क्या लाभ है, आनंद बुरी वर्धनम। हम सब आनंद की खोज में हैं, असली खोज असली आनंद चाहिए, असली आनंद चाहिए तो क्या करना है, क्या उपाय, महामंदिर में जाओ। और ये और भौतिक आकर्षण जितना घटेगा उतना धार्मिक आनंद बढ़ेगा। सो जन्माष्टमी वेरी ऑस्पिशियस डे एंड वी शुड प्रे टू द लॉर्ड, प्लीज गिव अस शक्ति सो दैट वी surrender to Him, which means your body, mind and senses in service to the Lord. ये ठीक है, आप दीपक गोस्वामी का वर्णन स्वीकार करते हो। दीपक गोस्वामी कहते हैं सर्वधर्म पढ़ते जब मीन्स टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा एंड द सुप्रीम लॉर्ड। आप सब जो यहाँ उपस्थित हो वहाँ के भक्त हो, आपकी प्रार्थना ये होनी चाहिए यहाँ पर गहराई के साथ भगवान के चरण कमलों के शरण शरण लो। श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव की गौर पर पसंद है। आप सबको पीछे सुनाई दे रहा था, कोई क्वेश्चन है,
क्वेश्चन है किसी का तो आप
पूछ सकते हैं। आप क्वेश्चन है सर,
हरे कृष्ण गुरु महाराज, वैष्णव प्रणाम, थैंक यू फॉर द वंडरफुल लेक्चर एंड गिविंग अस योर वंडरफुल एसोसिएशन। गुरु महाराज, मेरा प्रश्न था कि जैसे भगवद गीता के फोर्थ चैप्टर के नाइन्थ टेक्स्ट में कहा गया है, जन गण च मे देवम यो वेति तत्वतः तत्वा देवम पुनर्जनयति मा वेति सो अर्जुना। तो भगवान कहते हैं कि उनके आविर्भाव और जन्म को समझने के बाद हम इस मतलब हमें दोबारा से ना शरीर त्यागने वाला वापस नहीं आएंगे, लेकिन जब हम उनकी लीलाओं को पढ़ते हैं तो उनमें बहुत ऐसी जैसे रासलीला भी आती है और भी बहुत सारी लीलाएं आती है, तो उन्हें समझना भौतिक धरातल से थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम भौतिक जीवन
तो
उनकी आध्यात्मिक चीज़ों को कैसे समझ पाएंगे।
अगर हम भगवान के धीमे लीलाओं को समझना चाहते हैं, एक ही माध्यम है भक्ति योग, और भक्ति योग का आराम होता है भगवान के नामों के उच्चारण के द्वारा। फिर चैन हो ही नहीं, ऐसी जैसे आप उच्चारण करोगे आपके हृदय की मैल दूर होते जाएंगे, और फिर हम भगवान की दिव्य लीलाओं को समझ सकते हो। और भौतिक इंद्रियों से आप भगवान की लीलाओं को नहीं समझ सकते, जैसे आप अगर भगवान नरसिंहदेव की तस्वीर देखो, आधे पुरुष आधे पशु, मटेरियलिस्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट। इसके लिए कई लोग कहते हैं कि वैदिक संदेश माइथोलॉजी, माइथोलॉजी मतलब विच हैज नो ट्रूथ विच इज इमेजिनेशन, क्योंकि वो भक्ति के माध्यम से नहीं देख पाते। ओके, मैं गलत था।
महाराज जी, क्वेश्चन ये है कि महाराज आपने कहा था ना कि जो मन से सेवा करते हैं, आपने एग्जांपल दिया था तो महाराज जी उसका कोई क्वालिफिकेशन होता है क्या, कि मतलब कोई पर्टिकुलर कर सकता है?
नहीं, भगवान जब गीता का उपदेश देते हैं सबके लिए देते हैं, तो अगर आप मन द्वारा भगवान के इच्छाओं पर ध्यान करो या कोई तो आप भी कर सकते हैं।
महाराज जैसे हर कोई कर सकता है, मतलब भगवान
भगवान जो है आदेश देते हैं सबके लिए। बोलिए पूछिए।
हरे कृष्ण प्रभु जी, राधे राधे। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसे सड़क पे जैसे बच्चे भीख मांगते हैं, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे, ठीक है, और जो हॉस्पिटल में दो दो साल के बच्चे होते हैं और उनके माँ बाप बोलते हैं या लोग बाप बोलते हैं कि 90% लोग ये कर्म की वजह से हुआ है, तो ये सत्य है या फिर लोग बना के बोलते हैं? और सत्य है कि कर्म की वजह से होता है, तो फिर ये अगर कोई टीचर होमवर्क, अगर कोई स्टूडेंट स्कूल में होमवर्क करके नहीं आता तो उसे स्टूडेंट को पता होता है कि उसे मार इसलिए पड़ी है कि वो होमवर्क करके नहीं आया, तो फिर प्रभु जी उस बच्चे को भी पता होना चाहिए कि वो उसे किस बात की मारी है। अगर ये कर्म की वजह से होता है तो उसे क्यों नहीं पता?
प्रश्न क्या है?
जो छोटे बच्चे होते हैं सड़क पे मांगते हैं भीख वगैरह, उनको क्यों कष्ट मिलता है?
इस जन्म में मैं समझ गया। प्रश्न ये प्रश्न उत्तर ये है कि हम सब का हम सबको सुख और दुख का कोटा मिलता है कर्मों के आधार पर। हर व्यक्ति भारत में बिना डाटा के नहीं बनता क्योंकि उन कर्मों के इतिहास है। तो हम सुख और दुख वो भूलते हैं, ये सब हमारे कर्मों के आधार पर है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। और अगर हम तो अगर कोई बच्चा मान लो गरीब खाना का है तो उसका भी तो कारण है। और अभी भूलना नहीं चाहिए कि कर्मों के आधार पर हमें सुख मिलेगा और दुख मिलेगा। भगवान को दोष देने की आवश्यकता नहीं। हम कहते हैं मुझे ये कष्ट क्यों भुगतना पड़ा, मैं इसे भक्ति भी करता हूँ। तो भक्त भी हैं जो उनको भी पर कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है, इसी रूप में भगवान घटा देते हैं, डिस्काउंट कर देते हैं। पर लोगों को ये इसलिए है कि ये पृथ्वी को क्या कहा जाता है, दुखा है हमेशा चला, ये दो लक्षण है। It is all determined by our influence, by our action. Okay. We'll stop here. Thank you.
Hare Krishna Prabhu Ji. Hare Krishna Prabhu Ji. Sastram Dhanvat Pradham. और मेरा सवाल ये है कि जैसे कोई यंगस्टर्स भक्ति करते हुए कम उम्र में अपनी देह को त्याग कर देता है तो क्या उसे गौरव धाम की प्राप्ति हो सकेगी?
कैसे बोलिए
प्रभु जी? जैसे कोई यंगस्टर्स कम उम्र में भक्ति करते हुए अपने देह को त्याग देता है तो क्या उसे गौरव धाम की प्राप्ति हो सकेगी?
कोई यंगस्टर है अभी यंग है और भक्ति करते हुए शरीर को छोड़ दिया तो उसको क्या
मिलेगा? आप सवाल मांगे आप कीजिए। हरे कृष्ण
हरे कृष्ण। छोटा छोटा धन्यवाद दीजिए। हरे कृष्ण जी के बाद हरे कृष्ण।